Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Baladeva Jai Subhadra
Jai
Ragnatha Jai Ragnatha Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Srila Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya.
Narayanam namaskritya.
Naram chaiva narottamam.
Naram chaiva narottamam.
Devim Saraswatim vyasam.
Devim Saraswatim vyasam.
Tato jayamudiraye.
Nashta praesha badreshu.
Nityam Bhagavata Sevaya
Bhagavati Uttama Shloke
Bhaktir Bhavati Naishiki Srimad Bhagavatam Skanda 10 Adhyaya 5 Shloka Sankhya 16 Tai tai kamaihi adinatma yatauchitam apujayat vishnu arthaya swaputrasya Udayaya cha taistai kamena dinatma taistai kamena dinatma yato chitam apujayat yato chitam apujayat Vishnu Aradhanarthaya Vishnu Aradhanarthaya Swaputrasya Udayaya cha Swaputrasya Udayaya cha Taiste kamera dinatma.
Taiste kamera dinatma.
यतोचितं पूजय विष्णुराराधनार्थाय स्वपुत्रस्वयोदय शब्दार्थ इस प्रकार है तै तै उन उन कामे ही इच्छाओं को अधीनात्मा महाराजा नंद जो इतने वदान्य थे यथा उचितम जो उपयुक्त था अपूजयत उनकी पूजा की उनका पूजा की अथवा उन्होंने तुष्ट किया विष्णु आराधनार्थाय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से स्वपुत्रस्य अपने पुत्र को उदयाय सर्वतोमुखी प्रगति के लिए च तथा अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि दरिद्र नारायण की चर्चा चलाना फैशन बन चुका है किंतु विष्णु आराधनार्थाय शब्द का अर्थ यह नहीं है कि इस महान उत्सव में नंद महाराज ने जितने सारे लोग को तुष्ट किया वे सब विष्णु थे। वे ना तो दरिद्र थे ना ही नारायण, प्रत्युत वे नारायण के भक्त थे और वे अपनी अपनी सौशिक योग्यता सौशिक योग्यताओं द्वारा नारायण को तुष्ट करने वाले थे। अतः उन्हें तुष्ट करना भगवान विष्णु को तुष्ट करने का परोक्ष तरीका था। मद्भक्ता पूजयादिका, मेरे भक्तों की पूजा करना मेरी प्रत्यक्ष पूजा से बढ़कर है। वर्णाश्रम प्रणाली विष्णु आराधना के ही निमित्त है। वर्णाश्रमाचार्यता पुरुषेन परप्रमान विष्णु आराध्यते, विष्णु पुराण में कहा गया। जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु या परमेश्वर को तुष्ट करना है, किंतु असभ्य व्यक्ति या भौतिकवादी व्यक्ति जीवन के इस लक्ष्य को नहीं जानता। नते विदु स्वार्थगतिम हि विष्णु, मनुष्य का असली स्वार्थ भगवान विष्णु को तुष्ट करने में है। विष्णु को तुष्ट ना करने करके अन्य भौतिक समझौता द्वारा सुखी बनने का प्रयास बहिरर्थ मानिना सुख का गलत तरीका है। क्योंकि विष्णु हर वस्तु के मूल हैं, अतः यदि विष्णु प्रसन्न हो तो हो जाते हैं तो हर व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। विशेषकर मनुष्य को बाल बच्चे तथा कुटुंबी सभी प्रकार से सुखी रहते हैं। नंद महाराज अपने नवजात शिशु को सुखी देखना चाहते थे, यही उनका उद्देश्य था। इसलिए वे विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को अथवा विद्वान ब्राह्मणों मगाधों और सूतों को प्रसन्न करना आवश्यक था। इस तरह घूम फिर कर उनका उद्देश्य अंततः भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना था। ओमज्ञात विरामदस्य ज्ञानांजनशलाकर चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सरणलिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेशगोपिकान्त राधाकान्त तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो नंदोत्सव का वर्णन चल रहा है। पिछली बार हमने इस बात के ऊपर चर्चा किया किस प्रकार कि नंद महाराज अगले दिन गोपियों को और अन्य लोगों को जितने भी हैं उन सब के साथ नंदोत्सव मनाने के समय तुमने क्या किया? गायों को पूजा किया, ब्राह्मणों को पूजा किया, ये सब सुना। बाद में बहुत सुंदर तरीके से सब लोगों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराया ब्राह्मणों से। पिछले श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार बड़े आनंद से सब लोग दूध दही मक्खन सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे और आनंद में नाच रहे थे। अभी इस श्लोक में नंदोत्सव का जो पूर्णा होती है उसका वर्णन हो रहा है। कोई भी कार्य होता है, कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी कुछ भी वैदिक क्रिया होता है, अंत में ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देके संतुष्ट करना, ये विधि होता है। भगवीता में भगवान कहते हैं जो यज्ञ के अंत में जो दक्षिणा के बिना जो यज्ञ होता है उसका पूरा फायदा प्राप्त नहीं होता है या यज्ञ का पूर्णाहुति नहीं होता है। तो ये श्लोक में किस प्रकार नंद महाराज ने दान दिया किनको, उनके जितने भी ब्राह्मण थे और अन्य जितने भी लोग थे उधर खासकर के भक्त थे उन सबको कान दान कैसे दिया उसका वर्णन हो रहा है। तो 15-16 श्लोक साथ साथ में है, इसलिए 15 श्लोक में थोड़ा सा करने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंदो महामनस्तेभ्यो, नंद महाराज का वर्णन किया गया है कि वो कौन है, मना महामनः। ये 15वें श्लोक में महामनः करके संबोधित किया गया है और ये श्लोक में अधीन आत्मा करके वर्णन किया गया है नंद महाराज को। ये दो श्लोकों में 15 और 16 में एक है महामनः और दूसरा है अधीन आत्मा, ऐसा वर्णन किया गया है। अधीन आत्मा का अर्थ क्या है? जिन्होंने अपने आत्मा मन को अधीन में रखा है उनको अधीन आत्मा कहा जाता है। तो महामनः का अर्थ क्या है? जिनका मन बहुत महान है, महामनः। तो महामनः नंद महाराज को क्यों संबोधित किया? क्योंकि उन्होंने अनेकों जितने भी लोग थे ब्राह्मण इत्यादि थे उन सबको उन्होंने दान दिया। अस्तित्व में उसी व्यक्ति का मन और हृदय विशाल माना जाता है, महान माना जाता है, जिसके हृदय में दान देने की प्रवृत्ति रहता है, जिसके मन में लेने की प्रवृत्ति रहता है। साधारण भाषा में हम कहते हैं इसका मन छोटा है, इसका दिल बड़ा है, ऐसे अभी भी इसी प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप उनके पास जाओ, उनका दिल बहुत बड़ा है, इसका अर्थ क्या है? वो आपको कुछ ना कुछ दान देंगे, क्योंकि उनको देने का आदत है। अब इनके पास मत जाना क्योंकि इनका मन बहुत छोटा है। इसलिए एक व्यक्ति का जो महत्ता है वो कितना देने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर आधारित है। लेकिन आजकल हम मापते हैं एक व्यक्ति का महत्ता को उसके पास कितना है उसके ऊपर आधारित होकर मापते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है। तो कभी कभी हम मंदिर के लिए दान मांगने जाते हैं, हम पूछते हैं लोगों से किसके पास जाएंगे, तो बोलते हैं ये बहुत बड़ा आदमी उसके पास जाओ, लेकिन उनके पास जाने से कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन हो सकता है ये छोटा आदमी है यानी भौतिक दृष्टिकोण से लोगों की नज़र में, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, वो क्या कर सकता है, वो कुछ ना कुछ देगा। तो एक व्यक्ति का जो महत्ता वो उनका हृदय कितना विशाल है, मन कितना बड़ा है, वो किसके ऊपर आधारित है, उनके अंदर कितना देने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर आधारित है। वैदिक सभ्यता के अनुसार हर प्रसंग में हर जगह हर व्यक्ति को देने का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता था, लेकिन आधुनिक सभ्यता में लेने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आजकल घरों में जब बर्थडे मनाते बच्चों का बड़े खुश हो जाते बच्चे, क्यों? क्योंकि वो ये सोचते आज मुझे बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, वो क्या देगा, ये क्या देगा, वही सोचता है दिन भर, वही सोचता है क्या मिलेगा। लेकिन अभी याद है कि बचपन में हमारा जब बर्थडे मनाया जाता था, माता पिता वो एक गिफ्ट लेगा करके सोचते भी नहीं थे। उस दिन देने का आदत था, जो भी आए उनको कुछ ना कुछ देना था, जितने भी गांव वाले थे उनको कुछ ना कुछ देना था। और गांव वाले बोले कि थोड़ा सा निम्न जात के भी क्यों ना हो, अगर बुजुर्ग है, वृद्ध है, उनको प्रणाम भी करना था। तो बड़े बड़े लोग तो ठीक है, उनको प्रणाम करना ही है, उनसे आशीर्वाद लेना ही है, लेकिन अन्य जितने भी लोग थे आजू बाजू में, सबको अपने भले छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, बचपन में उनको हाथ में कुछ ना कुछ दे देते, ये दे दो तुम, ये दे दो। तो ये देने का आदत सिखाया जाता था, दे इज टू ट्रेन अस हाउ टू गिव। लेकिन अभी जब बच्चों का बर्थडे होता है, यही आशा करता है बच्चा कि क्या मिलेगा आज, आज तो स्पेशल है, मैं सबको इनवाइट किया है, तो क्या करूं, ये क्या दिया, वो क्या दिया। अभी ये बात छोड़िए, विवाह भी जब होता है उसमें भी क्या करते हैं लोग, क्या मिलेगा वही सोचते हैं। अभी इतना हद तक कि जो विवाह में जाते हैं वो भी सोचते हैं इसको क्या दूं। ये बहुत बड़ी समस्या है, इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन वैदिक जमाने में ऐसा नहीं था, दे वर ओनली थिंकिंग ऑफ, उनका प्रशिक्षण इसी में दिया जाता, किसको क्या प्रशिक्षण दिया जाता कि टू गिव। असियत में अगर कोई वस्तु को आप देंगे, मान लें आपके पास कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ है, आप उसको देंगे, देने के द्वारा केवल वो वस्तु ही शुद्ध नहीं होता है, बल्कि हमारा मन भी शुद्ध होता है। देने में मन शुद्ध होता है, ये पानी जो है वो प्रवाह होता है, व्हेन द वाटर फ्लोस दैट गेट्स प्यूरिफाइड, भले ही कितना भी दूषित पानी भी क्यों ना हो, जल भी क्यों ना हो, अगर वो प्रवाहित होता रहता तो क्या होगा, बहता जो पानी है वो हमेशा शुद्ध रहता है। तो वैसे ही जो वस्तु है अपने हाथ से जो बहता है, वो वस्तु भी शुद्ध होता है और हमारा मन भी शुद्ध होता है। हमारा ये बद्ध अवस्था में कि हमारी समस्या क्या है, आसक्ति हमारी समस्या है, और इस आसक्ति का समाधान या उस आसक्ति का जो समाधान या उसका इलाज क्या है, देना ही एकमात्र इलाज है। तो एक व्यक्ति ने कहा मुझे, प्रभु जी हम तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जप करने के द्वारा कृष्ण प्रति आसक्ति हो जाएगा, तुम्हारी भौतिक आसक्ति छूट जाएगा। मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, आपने शास्त्र का बराबर ठीक बात कहा, लेकिन आपका जप उस प्रकार होना चाहिए कि आप करते करते कृष्ण में आसक्ति हो जाए। तो ये सब देने की क्या जरूरत है, उनका कहना ही बात था कि हम तो जप कर रहे हैं ना, आध्यात्मिक जीवन मतलब जप करना है। तो मैंने कहा कि वो उस प्रकार का जप, एकदम बिल्कुल विरक्त भावना से जप करना, वो उस तेज हमारा नहीं है, आसक्ति इतना है। तो आसक्ति कम तभी होगा जब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वस्तुएं हैं, हमारे जो हम जिस चीज को मेरा करके मानता हूं, उस वस्तु को देना चाहिए। यू शुड गिव, देने की आदत डालना चाहिए। वी शुड पुट ए हैबिट इन एवरीबडी टू गिव। एक बार ऐसा ये था कि एक साधु थे, वो एक भिक्षा मांगने जाता था, एक व्यापारी था और उसके बाजू में और एक ब्राह्मण थे। तो ये साधु जो है व्यापारी के घर में पहले भिक्षा मांगने के लिए जाता था। उस घर की जो औरत थी वो क्या करती थी, उसको पत्थर फेंकती थी उसके ऊपर, उस साधु के ऊपर। तो बाजू आने के बाद वापस ब्राह्मण के घर में जाता था, उस ब्राह्मण की जो पत्नी है वहाँ के साधु को भिक्षा देती थी, चावल इत्यादि, और बोलती थी कि रोज आप आते हो, पत्थर फेंकती, कचरा फेंकती आपके ऊपर, क्यों फिर भी आप उसके घर में भिक्षा मांगने क्यों जाते हो। तो साधु ने कहा कि कम से कम देने का तो आदत है, आज तो पत्थर फेंक रही, आज तो वही कभी ना कभी तो पूछना दे, कभी तो शुद्धिकरण होगा। इसलिए ये जो शुद्धिकरण जो होगा, साधुओं का एक ही उद्देश्य है, जब किसी के गृहस्थ के घर में जाते हैं
उनका एक ही उद्देश्य है कि जब उनसे कुछ लेते हैं तो फायदा किसका है, जो देता है उसके लिए फायदा है। अस्तित्व में बहुत सारे हमारे मंदिर में अनेकों अनेकों जगह दान देने वाले, डोनेशन देने वाले आते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा डोनर हैं, सबसे अच्छा डोनर वो हैं जो सोचता है कि मेरे हित के लिए मैं दे रहा हूं। ये सोचना कि ये बेचारे गरीब लोग हैं, चलो दे देता हूं, ये जो है ये वास्तविक दान नहीं माना जाता है, क्योंकि उस समय ये अहंकार रहता है कि वो सोचता है कि मैं कृष्ण हूं, आई एम कृष्णा। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर, मंदिर के भगवान के सामने भक्ति रसामृत सिंध में कहा गया है कि किसी को दान नहीं देना चाहिए, मंदिर के अंदर किसी को दान नहीं देना चाहिए। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है, भक्ति रसामृत सिंध में ऐसा क्यों लिखा गया है, व्हाई इट इज सेड, क्योंकि वास्तविकता में इस जगत को पालन पोषण करने वाला कौन है, कृष्ण। और उनके सामने आप बताओगे कि मैं कृष्ण हूं, यानी कृष्ण के साथ कंपटीशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इधर दिखा रहे दान पेटी। अस्तित्व में ये दान पेटी उचित शब्द नहीं है, दान पेटी ये दान कृष्ण को दे रहे हो, यू आर गोइंग टू गिव डोनेशन टू कृष्ण। बड़ा कभी भी ये शब्द सुनता हो दान पेटी, मुझे भी करा अजीब लगता है, क्या दान पेटी है, डोनेशन बहुत है, वो भी कृष्ण के सामने आके तुम डोनेशन दोगे। अस्तित्व में ये जो दान जो शब्द है वो उचित शब्द नहीं है, कृष्ण के पास आके जो दिया जाता है वो दान नहीं है बल्कि टैक्स है, कर है, इट इज टैक्स। और जो ब्राह्मणों को दिया जाता है वो दक्षिणा है, क्योंकि जब ब्राह्मण कोई यज्ञ करता है, जो यज्ञ का जो फल है भले ही यजमान बैठा भी क्यों ना हो, वो सबसे पहला ब्राह्मण के पास रहता है। जब यजमान जब ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, वो दक्षिणा देने के द्वारा वो यज्ञ का फल ब्राह्मण जो है उस यजमान को ट्रांसफर करता है, क्योंकि भगवान जो है वो जो यज्ञ कराता है यजमान उनको यज्ञ का फल नहीं देते, वो ब्राह्मण को ही देते हैं। यथा उचित जब दक्षिणा मिलता है ब्राह्मण को, संतुष्ट होता है, तब वो ब्राह्मण जो है वो यज्ञ का फल प्रदान करता है। तो जो ब्राह्मण को दिया गया जो चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है दान है, तो ना उसको यज्ञ का फल मिलेगा, ना उनको ये जो उनका हृदय की शुद्धिकरण होगा। तो इसलिए जो दे रहे हैं उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्या मनोभावना से दे रहे वो भी महत्वपूर्ण है, विथ वॉट कॉन्टेक्स्ट वी आर गिविंग दैट इज महत्वपूर्ण। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है जो भगवान की मंदिर में जो आप देके रसीद फाड़ते हो वो, या दान पेटी में, ये तथाकथित जो पेटी में, दान पेटी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जो डाला जाता है वो क्या है, इट इज़ ए टैक्स, ये मैं टैक्स दे रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण कौन है, ये सारे जगत के मालिक है, वास्तविक राजा है, मैं उनका वास्तविक प्रजा हूं, तो प्रजा को कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान के मंदिर में आके जो दिया जाता है, भले ही आधुनिक सभ्यता में लिया जाता है कि डोनेशन रिसिप्ट डोनेशन बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट ए डोनेशन, इट इज टैक्स। कृष्ण का हक है आपके वस्तुओं के ऊपर, कृष्ण हैज द राइट ऑफ योर प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर भरना पड़ेगा। जैसे सड़क है, सड़क के ऊपर हम चल रहे हैं, सड़क आपका नहीं है लेकिन फिर भी चल रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, उस सरकार को कर भरना पड़ेगा। इसलिए इस जगत में प्रत्येक वस्तु किसका है, कृष्ण का है। आप कैसे बोल सकते कृष्ण का है, क्योंकि आपका जन्म लेने से पहले भी था वो, और मरने के बाद भी वो वस्तु रहेगा, तो इसका अर्थ क्या है, वो आपका नहीं है, यही सबूत है। सबूत यही है कि ये जो बोलते हैं ये जमीन मेरा है, तो आपके जन्म लेने से पहले भी था ना ये जमीन, मरने के बाद भी रहेगा, इसका अर्थ क्या है, ये जमीन या कोई भी वस्तु आपका नहीं है। तो ये मेरा बच्चा है, क्या आपका बच्चा, आपका जन्म लेने से पहले आपको नहीं था, वो भी था, अभी आपके पास आया है। तो ये विचार बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जो इस प्रकार की विचारधारा से अपना जीवन यापन करता है वो निष्पाप जीवन यापन करता है, और हमेशा सुख शांति से जीता है, हमेशा समृद्धि रहती है। अभी देखिए नंद महाराज कि जो हमने देखा कि संपत्ति, उनकी जो खुशहाली, उनकी जो प्रगति, उनकी जो वैभव, हमने देखा कि दही दूध इत्यादि से वो खेल रहे। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में ऐसा लगता है कि वो समय में, कृष्ण के समय में, 5000 साल नंद महाराज के गाँव में दही दूध केवल खाने के लिए नहीं था बल्कि खेलने के लिए भी था। खेलने के लिए भी था, खाली खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए भी था। अभी वो खाने को भी नहीं मिलता है। अभी बोलो कि आपको वो ठीक है, मैं 1000 रुपये देता हूँ, 1 किलो मक्खन लेके आओ, गाय का, देसी गाय का मक्खन नहीं ले पे आओ, मंदिर मिलेगा नहीं मुंबई में, यू विल नॉट गेट इट। 1000 रुपये के आप 10000 रुपये लेके जाओ, शुद्ध चीज नहीं मिलता, यू डोंट गेट इट। ऐसा वस्तु है, ऐसा ऐसा परिस्थिति है। तो देने से व्यक्ति का समृद्धि बढ़ता है, वो कभी कम नहीं होता है। वंस यू स्टार्ट गिविंग ऑटोमेटिकली, जैसे समझ लीजिए कि आपने कुछ दिया तो आप जगह खाली हुआ तो भरेगा, देन सम कृष्णा विल सेंड। तो कभी भी देने से पहले, देने के लिए हमको सोचना नहीं चाहिए दू की नहीं, ये सोचना जो है ये हमारा पाप की प्रवृत्ति की वजह से ऐसे सोचते हैं, क्या दू कि नहीं दू, क्या करूं। असल में ये देने के द्वारा ये समझना चाहिए हमको, हमारे में ही हित है। तो इसलिए नंद महाराज को क्या कहा गया है, नंदो महामनस्तेभ्यो, महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम। तो गोधनम, गाय को धन के रूप में वर्णन किया गया है, गोधन को नंद महाराज ने दान दिया। गायों को कैसे दान दिया उन्होंने, अलंकार, बहुत सारे अलंकारों के साथ। ऐसा कई वर्णन है कि गायों के जो सिंह होते हैं और सोने की जो मुद्राएं हैं, एक सिंह में एक बैग, दूसरे सिंह में सोने की मुद्राएं डाल के दान देते थे, गायों को अलंकार अलंकृत करके दान दे देते हैं। वैसा सूत सूत मगाध वंदिभ्यो, सूत मगाध वंदिभ्यो, सूत करके होते हैं कुछ लोग, सूत का अर्थ है कि कुछ गायक होते हैं, दे आर सम स्पेशल म्यूजिशियंस। पहले जमाने में अलग अलग प्रकार के लोग कथा या कृष्ण का गुणगान करते थे, कुछ ब्राह्मण गुणगान करते थे, कुछ म्यूजिशियंस वाद्य इत्यादि करने वाले गुणगान करते थे भगवान का, अगाध, और तीसरे है वंदी, वंदी, वंदिस, तीन प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है। ये तीन प्रकार के लोग एक गान के द्वारा, एक कथा के द्वारा, एक वाद्य सामग्रियों के द्वारा वो कृष्ण का गुणगान करने वाले होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के लोग वैसे तो ब्राह्मण जाति के हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों प्रकार के लोगों को हरि कथा में बहुत उनका निपुणता रहता है प्रस्तुत करने में। एक तरीके से बताया जाए कि ये लोग ड्रामा करने वाले हैं, कुछ हरि कथा करने वाले हैं, और कुछ होते हैं वो खाली म्यूजिक चलाते हैं, म्यूजिक म्यूजिक के द्वारा या गान के द्वारा या वाद्य सामग्रियों के द्वारा वो भगवान की कथाओं को प्रचार करते हैं। तो अभी तो लोग दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन गांव में हो सकता है, कुछ गांव में अभी भी हो, लेकिन बचपन में मैं देखा कि घरों में उनको बोलते थे हरिदास, हरिदास करके बोलते थे, वो लोग आते थे और घर के सामने वो कुछ कृष्ण का गान करेंगे, कुछ ड्रामा करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। तो आजू बाजू घर वाले इकट्ठा होते हैं, 15-20 मिनट का पूरा शो होता है, उसके बाद आजू बाजू घर में लोग सब ला के उनको कुछ ना कुछ देंगे, चावल कोई दिन, वैसा उधर से दूसरी जगह निकल जाते हैं। तो ये हमारी वैदिक सभ्यता थी। इवन जी ऐसा नहीं कि केवल उधर ब्राह्मण समाज के लोग ही थे, अन्य समाज के लोग भी थे, लेकिन सभी भक्त थे। असल में ऐसा माना जाता है कि जो म्यूजिशियन होता है, जो म्यूजिक या डांस या ड्रामा इत्यादि करते हैं, वो अन्य जातियों के भी थे, उन लोगों को भी यथा उचित नंद महाराज ने संतुष्ट किया। इसलिए उस श्लोक में कहा गया है ये अन्य विद्योपजीविना, ये अन्य विद्योपजीविना, अन्य जितने भी लोग थे उधर नंद महाराज के नंदोत्सव में, जो अपनी कला के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, कोई हो सकता है कोई विद्या प्रवचन इत्यादि देके अपना जीवन यापन करता हो, कोई कला के द्वारा अपना जीवन यापन करता है, इन हर प्रकार के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है या उनकी संतुष्टि है यथोचित नंद महाराज ने किया। अभी हमने दान देने के विषय में दो चीज़ों की चर्चा की, एक है देना चाहिए, देने की आदत होना चाहिए, दूसरा है कौन सी भावना से देना चाहिए, क्या भावना से देना चाहिए कि इसके द्वारा मेरा हित है, मेरी प्रसन्नता या मेरी संतुष्टि है, ये दो बातों को चर्चा किया। तीसरा बात ये है किसको कितना दान देना चाहिए, किसको कितना दान देना चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यथा उचित दान देना चाहिए। उस व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है या उनकी इच्छा है, उनकी जो किस चीज से संतुष्ट होगा, कौन सा तीज देने से कौन किस प्रकार संतुष्ट होगा, उस हिसाब से दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आया थोड़ा सा एक बर्तन लेके आया, थोड़ा उनको आप 1,00,000 रुपए के चेक दो आप जाओगे मंदिर निर्माण कार्य के लिए, मंदिर बन रहा है थोड़ा आप कुछ सहयोग दीजिए, उनको आप 50 रुपए दोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यथा उचित होना चाहिए। तो इसलिए दान देने वाले व्यक्ति तो देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति जो दान जिसको मैं दे रहा हूँ उनकी स्टेटस क्या है, उनका पोजीशन क्या है, क्या बड़े ऊंचे गुरु हैं, अनेकों शिष्य हैं, या शिष्य है चेला है, कौन है, कितना विद्वान है, क्या कोई ये किस कार्य के लिए दे रहा है, ये अनेकों अनेकों चीज़ों विचार करके यथा उचित देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को भी दे दोगे वो नहीं चलेगा, है कि नहीं, इट्स नॉट प्रॉपर। तो ये बातें नंद महाराज ने किया। और आगे तैस्तेर यानी तैस्तै कामेर अधीनात्मा यथोचितम उपाजयत, यथोचितम उपाजयत, अलग अलग लोगों की जो कामना है उनको संतुष्ट किया नंद महाराज ने। संतुष्ट करने के बाद विष्णु आराधनाय आराधनायार्थ, आराधनार्थ विष्णु का आराधना को लक्ष्य में रखते हुए नंद महाराज ने किया, ये चौथा बात है। जब भी हम भक्तों को कुछ देते हैं विष्णु प्रसन्न होते हैं, द लॉर्ड बिकम्स वेरी हैप्पी। इससे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल एक फैशन बन चुका है, किसका फैशन बन चुका है, दरिद्र नारायण का सेवा करना, दरिद्र नारायण बोलने में भी शर्म आता है लोग, दरिद्र नारायण की सेवा करो, वो लोग सोचते हैं कि जितने भी दरिद्र लोग हैं वो नारायण हैं, और नारायण कौन है, दरिद्र है। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत क्रोधित होकर एक जगह प्रवचन दिए थे, नारायण लक्ष्मीपति है वो दरिद्र नहीं है, और ये दरिद्र लोग इसलिए दरिद्र है क्योंकि वो नारायण की उपासना नहीं करते, ये समस्या है। तो उनकी दरिद्रता दूर कैसे होगी, जब आप उनको नारायण की सेवा में लगाओगे तभी उनकी दरिद्रता दूर होगी। आप जितना इन दरिद्र लोगों को दरिद्र नारायण समझ के जितना उनको पैसा दोगे उतना ज़्यादा दरिद्र बनेंगे, और जो देने वाला भी वो भी दरिद्र बनेगा, और जो लेने वाला है वो भी दरिद्र बनेगा। तो नारायण की वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए, नारायण कौन है, लक्ष्मीपति है। इसलिए जब हम ना भगवान को जो दिया जाता है वो टैक्स का, उसको उनको दान नहीं दिया जाता है, लक्ष्मीपति को क्या दान देंगे। अब कोई मान लो करोड़पति है, उसके पास जाके मैं आपको 50 रुपये डोनेशन देना चाहता हूँ, वो हंसेगा आपको, 50 रुपये मुझे डोनेशन दोगे, ले लो 50 रुपये तुम खुद लेके जाओ, मुझे तुम्हारा 50,000 नहीं चाहिए, टेक दिस 50,000 रुपीज़। विष्णु और आराधनायार्थ, यानी विष्णु का आराधना करना ही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने कोटेशन में देते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का मूल उद्देश्य ये है, विष्णु को प्रसन्न करना, टू सैटिस्फाई विष्णु। लाकरी में कहा क्यों किया ये सब चीजें, नंद महाराज को अत्यंत प्रेम था, किससे? अपने पुत्र से। क्या? किससे? कृष्ण से। कृष्ण का रक्षा करना, करने की जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, ये हर माता पिता में रहता है। कृष्ण के जितने भी माता पिता है यानी वात्सल्य रस में है, उन सबको यही भावना रहता है कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करूँ, आई शुड प्रोटेक्ट कृष्ण। ये वात्सल्य रस का मूल भाव ये है कि वो चाहते हैं कि कृष्ण की रक्षा, और कृष्ण की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी नंद महाराज ने ये सारे कार्यक्रम इसलिए किया, दान इत्यादि सब कुछ इसलिए दिया कि ये सोचते हुए कि ये सब करने के द्वारा विष्णु प्रसन्न रहेंगे, विष्णु प्रसन्न रहेंगे तो हमारे कृष्ण जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, ही विल बी वेरी मच सिक्योर्ड। तो ये सब बातें हैं नंद महाराज के नंदोत्सव के विषय में। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, देयरफॉर ही वांटेड टू सैटिस्फाई विष्णु, एंड टू सैटिस्फाई विष्णु इट वाज नेसेसरी टू सैटिस्फाई डिवोटीज सच एज अ लर्नड ब्राह्मणस, मगातस एंड सूतस। दस इन ए राउंड अबाउट वे अल्टीमेटली इट वॉज विष्णु हु वॉज टू बी सैटिस्फाइड। अंततः नंद महाराज का एक ही उद्देश्य था कि विष्णु प्रसन्न हो जाए तो मेरा कृष्ण सुरक्षित रहेंगे। इनको मालूम नहीं है ये विष्णु ही है, विष्णु का स्रोत है। दैट इज वात्सल्य स्पेशल क्वालिटी। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन के प्रश्न है? अच्छा प्रश्न है। यत् करोषि यज्जोषि यदश्नासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आपका प्रश्न है कि अर्पणम ये शब्द के ऊपर है। हाँ, अर्पणम, यद अर्पणम। टैक्स भी तो अर्पण ही किया जाता है ना, और अर्पण नहीं करे तो जबरदस्ती लिया जाता है। इसलिए जबरदस्ती लेने से पहले अर्पण कर दो, है कि नहीं? हाँ, अर्पण मतलब टैक्स ही है। जैसे कोई ऑफिसर है, टैक्स का ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको टैक्स भरना पड़ता है, भरते हैं यानी अर्पण करते हैं। अस्तित्व में ये जो नियम है टैक्स भरना है, नियम को स्वेच्छा से पालन करो या जबरदस्ती पालन करो। भगवान कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है मुझे देना, यानी टैक्स देना, लेकिन लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है, स्वेच्छा से दोगे या जबरदस्ती दोगे। पहला जमाने में ऐसे लोग थे जो स्वेच्छा से खुशी खुशी दे देते, चलो टैक्स भर दे क्योंकि राजा हमारे ऐसा। तो ये समझ के देना कि अगर मैं टैक्स नहीं भरूंगा तो सरकार डूब जाएगा। कृष्ण का सरकार टैक्स नहीं भरने से नहीं डूबता है, हम डूब जाते हैं। सो द थिंग विच हैज बीन गिवन टू, ये ध्यान रखिए, जो चीज मंदिर में दिया जाता है, संस्था में दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स, कर। ये शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो ब्राह्मणों को दिया जाता है वो क्या है? वो दक्षिणा। हम कर क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे राजा हैं, हर वस्तु किसका है? कृष्ण का है। मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे मुझे क्या करना होगा? कर भरना पड़ेगा। और जो ब्राह्मण हैं या अन्य जितने भी लोग हैं, यज्ञ हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को ब्राह्मणों को घर में बुलाया, भक्तों को घर में बुलाया, तो भोजन खिलाया। अस्तित्व में भगवान जटराग्नि के रूप में अंदर है, आपने आहुति दिया यानी यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद क्या करना चाहिए? यज्ञ का फल किसके पास है? वो ब्राह्मण। आपने जिनको भोजन खिलाया है वो भोजन खिलाने का जो पुण्य है, जो सुकृति है, वो किसके पास है? जिसको खिलाया उसके पास है। वो ब्राह्मण आपके घर में, वो भक्त जो है आपके घर में, उनको कहीं और नहीं मिला करके नहीं आया, भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया, आपके बारे इसलिए आया कि आपको शुद्धिकरण करने के लिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है, उनका गुणगान इस प्रकार किया गया शुरुआत में भागवतम में, कि नवीशारण ऋषि कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा सुना, हम गृहस्थों के घर में केवल उतना ही समझ देख रहते थे जितना दूध गाय से दूध निकलता है, वो भी किसके लिए रहते थे? केवल उनको शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए ही उनका एकमात्र विचार था। लोग सोकर सोचेंगे सुखदेव गोस्वामी हमारे घर में दूध लेने के लिए आए हैं, ये मूर्खता है। असत में हमको संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम अतिथि तीर्षिताम तमोंधम, ये जो संसारियों को एक सुंदर भागवत को प्रदान करके ये तमो तमस से उद्धार करने के लिए आए, तो उस समय ये जो दान इत्यादि देने के द्वारा, मैं ये शब्द इस्तेमाल दान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि और कोई शब्द हमको लौकिक तरीके से समझ में नहीं आएगा। भले ही एक गृहस्थ मंदिर में दान देता है, क्योंकि मनोभावना ये क्या होना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। अगर ये सोचे कि अगर मैं नहीं दूंगा मंदिर नहीं बनेगा, मैं नहीं दूंगा तो भगवान भूखे हो जाएंगे, भोग नहीं लेगा, मूर्खता, इट इज फुलिशनेस। इसलिए जो दान मांगने भी जाते हैं भगवान के लिए, नम्रता से भी जाना चाहिए, बड़े ठाट से भी जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, टैक्स कलेक्टर, हाँ, वो आपको समझाता है, देखो आपका ये इतना इतना है, कुछ भी नखरा करोगे तो क्या करोगे? सर, इट शुड बी लाइक दैट। आपने देखा है कि बड़े बड़े जो डोनेशन इकट्ठा करते हैं मंदिर के लिए, अब जो भी जाके देखिए, देखने प्रभु है, सूरदास प्रभु है, बड़े एक्सपर्ट है, बड़े ठाट के साथ जाते हैं और सब लोग एकदम नीचे होते हैं, और हम लोग जाएंगे थोड़ा सा भगवान के नाम पे थोड़ा दे दो, ये सब चीज़ें जो है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। ये हरिदास को एक बार बता रहे थे MBA बेगिंग, लेकिन वो बेगिंग भी कैसे हैं, प्रभुपाद ने कहा वी आर सोफिस्टिकेटेड बेगर्स, है भिखारी लेकिन फिर भी क्यों सोफिस्टिकेटेड क्यों है? क्योंकि मालूम है हम, वी आर रिप्रेजेंटेड इन कृष्णा, दे आर एक्चुअली गिविंग टैक्स फॉर देयर बेनिफिट। मैंने सुना एक बार, मैं एक बड़े कलेक्टर थे उनके साथ में बैठा था उसका, तो आप जानते होंगे हरिदास प्रभु, प्राणानंद प्रभु जानते हो, हाँ, क्या कलेक्शन करते साउथ में, हाँ, पूरा साउथ में जितने भी मद्रास मंदिर है, जितने मंदिर है, वो सब बैंगलोर मंदिर में, आप सब जगह उन्होंने इकट्ठा किए फंड। वो कैसे जाते हैं ऑफिस में? कोई मिनिस्टर के ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे तो सब लोग क्या सेवा है। तुमने क्लियरली उनको बोला, आप जो दे रहे हो ना, किस मुझे मत दे, मुझे नहीं दे रहे हो, भगवान को भी जरूरत नहीं है, आपके लिए, आपके हित के लिए। तो उनके पास ऐसा कन्विक्शन था, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन उनका इतना कन्विक्शन था कि भगवान, सब कुछ भगवान का है, अगर आप नहीं दोगे तो आपकी नुकसान है। अगर कोई सोचेगा देने से नुकसान होगा, प्रचारक वो है जो कन्विंस करता है, क्या करता है कन्विंस, आपका देने से आपको ही हित है, आपका ही फायदा है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। दंत्राश्रम भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।